ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम का ये तृतीय स्कंद अध्याय संख्या 31 और श्लोक संख्या 16।
ज्ञानम यदि तद्दधा कतमास देवा त्रैकालिकं स्थिरचरेष्वनुवर्तितांशः तं जीवकर्म पदवीम् अनुवर्तमाना तापत्रयोपशमनाय वयं भजेम।
ये जीव का प्रार्थना कहिए, बद्ध जीव जो अब गर्भ में ही है, उसका विचार, उसका कुछ अपना आत्म परीक्षण, अपना साक्षात्कार, यह कपिल भगवान सुना रहे हैं। इसे ये भी समझना चाहिए कि एक समय हम भी, हमारे में ऐसा विचार रहा जब गर्भ में हम थे, बड़े ही परेशान थे, दुख में सब स्मरण सब करे, दुख में सभी स्मरण करते हैं तो जीव को भी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। उस समय जठर में गर्भ में उसको कुछ अच्छे विचार आ जाते हैं, कुछ संकल्प भी करता है वो जीव, तो वही यहां हमको सुना रहे और कपिल भगवान अपनी माता को ही सुना रहे हैं, फिर हमको भी सुनने को मिल रहा है। तो क्या कहा अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की भगवान के अंशिक स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा के अतिरिक्त और कौन समस्त चर तथा अचर वस्तुओं का निर्देशन कर रहा है, मतलब कोई नहीं कर रहा, केवल अंतर्यामी परमात्मा ही चर और अचर का निर्देशन नियंत्रण संयम कर रहे हैं। वे काल की इन तीनों अवस्थाओं भूत वर्तमान तथा भविष्य में उपस्थित रहते हैं वो अंतर्यामी परमात्मा, भूत वर्तमान भविष्य में उपस्थित रहते हैं, अतः बद्ध जीव उनके ही आदेश से विभिन्न कर्मों में रत है और इस बद्ध जीव जीवन के तीनों तापों से मुक्त होने के लिए हमें उनकी शरण ग्रहण करनी होगी। उपशमनाय वयम भजेम। अकेला ही हम सभी, मतलब जो जो बद्ध जीव या गर्भस्थ जीव, हम सभी को क्या करना होगा, वयम भजेम, तम वयम भजेम, उनकी शरण ग्रहण करनी होगी। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब बद्ध जी माया के चंगुल से छूटने के लिए उत्सुक रहता है तो उसके अंतकरण में स्थित परमात्मा स्वरूप भगवान उसे ये ज्ञान देते हैं। क्या ज्ञान? मेरी शरण में आओ। क्या ज्ञान है? मेरी शरण में आओ। परमात्मा ज्ञान देते हैं तब जब व्यक्ति चंगुल से, संसारिक माया के चंगुल से छुटने के लिए उत्सुक रहता है तो अंदर से आवाज आती है। अंदर से मतलब कहां से? परमात्मा अंदर है तो वे बोलते हैं उस जीव को और कहते हैं मेरी शरण में आओ। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, जैसा कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं, अन्य सारे कार्यों का परित्याग करके मेरी शरण ग्रहण करो। ये तो उन्होंने घोषणा ही कर दी। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। गर्भ में भी उसने ये आवाज सुनी थी, भगवान की शरण में जाओ। और फिर सभी जीवों को पुनः स्मरण दिलाए हैं, रिमाइंडर भगवद गीता कहे भगवान, और मेरी शरण ग्रहण करो। यह मानना होगा कि ज्ञान का स्रोत परम पुरुष है। आप मानते हो कि नहीं? मानना पड़ेगा। ज्ञान के स्रोत कौन है? अहम सर्वस्य प्रभवः। वैसे हर बात के स्रोत भगवान ही है। आप हो? आप में से कोई है ज्ञान का स्रोत? आपके बाप दादा है? ऐसे पीछे जाएंगे खोजते ढूंढते तो ब्रह्मा मिलेंगे, लेकिन तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। मैं भी स्वयं ज्ञान के स्रोत नहीं है, उनको भी ज्ञान दिया भगवान ने। भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है, उसमें से एक ऐश्वर्य है ज्ञान। षड ऐश्वर्यों में एक है ज्ञान। तो सारे ज्ञान के स्रोत भगवान है। भगवद गीता में इसकी पुष्टि होती है, मत्तः स्मृतिर् ज्ञानम अपोहनम च। तो श्रील प्रभुपाद लिख तो दिए या कहे कि सभी ज्ञान के स्रोत तो कौन है? भगवान है। तो इसका सबूत क्या है? स्वयं भगवान ही कहे, मत्तः स्मृतिर् ज्ञानम अपो। स्वयं भगवान कहे, मुझसे क्या होता? मत्तः स्मृति, मत्तः ज्ञानम, मत्तः अपोहनम। मुझसे ज्ञान, मुझसे स्मृति, मुझसे भुलावा, भूलना भी, उसका स्रोत भी भगवान ही है। भगवान कहते हैं, मेरी ही द्वारा मनुष्य वास्तविक ज्ञान तथा स्मृति प्राप्त करता है, और मुझी ही से विस्मृति भी मिलती है। तुमको भगवान याद आते हैं तो उसके स्रोत भगवान है, और हम भगवान को भूले हैं तो उसके कारण भी कौन है? भगवान ही। सर्व कारण कारणम। मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं कहने वाले कौन है? वैसे हम कहते हैं, हम रिपीट करते हैं, लेकिन ये आइडिया कौन देते हैं? भगवान नहीं, कहो भगवान नहीं है। भगवान कौन कहते हैं? भगवान ही कहते हैं। वैसे एक व्यक्ति मिलने गया अपने मित्र को, तो उस व्यक्ति ने ए कोई है? तो छोटे बालक ने दरवाजा खोला, तो उस मित्र ने कहा, तुम्हारे डैडी हियर, तुम्हारे पिताजी को मिलना है। तो बच्चे ने कहा, थोड़ा देख के आता हूं। तो उसने खोजा, घर बड़ा था उसका। तो कुछ समय के बाद जब पिताजी मिले, जहां भी वे थे, जिस कक्षा में, जिस मंजिल पर, और तो पुत्र ने कहा कि आपके वो फलाने मित्र आए, आपको मिलना चाहते हैं। तो पिताजी ने कहा कि उनको कहो कि मैं यहां नहीं हूं। तो बच्चा दौड़ के द्वार पर गया और उसने क्या कहा? मेरे पिताजी ने कहा। क्या कहा? मैं नहीं हूं। एग्जैक्टली ऐसी बात है। संसार में अगर कोई कहता है भगवान नहीं है, तो ये सारा तर्क वितर्क भी भगवान ही, उसका उत्पादन भगवान ही किए हैं। जो मनुष्य भौतिक दृष्टि से संतुष्ट होना चाहता है या जो प्रकृति पर अधिकार जताना चाहता है, भगवान उसे अपनी सेवा की विस्मृति तथा भौतिक कार्यकलापों के तथा कथित सुख का अवसर प्रदान करते हैं ताकि वो भूल जाए भगवान को। इसी प्रकार जब कोई इस प्रकृति पर अधिकार करने में हताश हो जाता है, अभव बंधन से छूटना चाहता है, तो भगवान उसे भीतर से यह ज्ञान प्रदान करते हैं कि वह उनकी शरण में जावे, तभी उसकी मुक्ति होगी। हम लोग जो यहां पहुंचे हैं, अब कार्तिक मास और यहां वृंदावन पहुंचे हम, तो एक समय जरूर हमने भी ऐसी आवाज सुनी होगी, गर्भ में नहीं, उसको तो भूल गए। यही तो बात है, भजीब बलिया ऐसे भीतरे क्या संसार भीतरे और भूलिया रही ले तुम्हें अविद्या भरे। तो इस बात को भक्ति विनोद ठाकुर इस गीत में लिखे हैं, भजी भजीबो आमी भजीबो, यस है बंगला है, आमी भजीबो। जीव ने क्या कहा, मैं भजन करूंगा प्रभु आपका, मैं भजन करूंगा। भजीबो बलिया, तुमने कहा था भजीबो बलिया ऐसे, ऐसा कह कर ही तो तुमने तुम जन्मे, तुम प्रकट हुए, लेकिन जन्म लेने के उपरांत क्या हुआ, भूलिया रही ले तुम्हें अविद्या भरे, तुम पुनः भूल गए जो संकल्प करके तुम भगवान को वादा किए। तुम क्या, तम वयम भजे मा, हम उनकी शरण में जाते हैं, उनका भजन करते हैं, लेकिन जन्म लेने के उपरांत अविद्या से भर गए, तुम्हारा लालन पालन शुरू हुआ और धीरे धीरे लोगों ने घेर लिया और अविद्या से लिप्त हो गए तुम और भूल गए उस वादे को जो तुमने गर्भ में वादा किया था, संकल्प लिया था। यह ज्ञान भगवान या उनके प्रतिनिधि के अतिरिक्त अन्य कोई प्रदान नहीं कर सकता। भगवान चैतन्य चरितामृत में रूप गोस्वामी को उपदेश देते हैं कि जीव जन्म जन्मांतर घूमता है और संसार में कष्ट भोगता है, किंतु जब कोई भव बंधन से छूटने के लिए अत्यंतिक उत्सुक रहता है तो उसे गुरु तथा कृष्ण से प्रकाश प्राप्त होता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान, जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इसका अर्थ हुआ कि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और जब जीव वास्तव में उत्सुक होता है तो वे उसे अपने प्रतिनिधि प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करने का आदेश देते हैं। गुरु द्वारा भीतर से निर्देशित होकर वह बाहर से पथ दिखाए जाने पर मनुष्य को कृष्ण भक्ति का मार्ग प्राप्त होता है, जो भव बंधन से छूटने का मार्ग है। अतः जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक कोई अपने वास्तविक पद पर स्थित नहीं हो पाता। जब तक उसे परम ज्ञान द्वारा प्रकाश प्राप्त नहीं होता तब तक उसे इस जगत में जीवन संघर्ष के लिए कठिन यातनाएं झेलनी पड़ती है। अतः परम पुरुष की कृपा का प्राकट्य होता है, बद्ध जीव को गुरु के प्रत्यक्ष आदेश का प्राप्त गुरु से प्रत्यक्ष आदेश प्राप्त करने होते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे वह कृष्ण भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने लगता है। कृष्ण भक्ति का बीज बद्ध जीव के हृदय में बोया जाता है और जब मनुष्य गुरु के उपदेश सुनता है तो वह बीज फलित होता है और जीवन धन्य हो जाता है। ज्ञानम यद एतद् अधात् कतमः सदेवः, वो ज्ञान देने वाले और कौन हो सकते हैं, ये जीव का अपना विचार यहां व्यक्त हो रहा है। तो ज्ञान देने वाला और कोई हो ही नहीं सकता। त्रैकालिकम, बद्ध जीव के जीवन के तीनों अवस्था में त्रैकालिक, वो कौन सी अवस्थाएं हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, अनुवर्तितांशः, अनुवर्तितांशः भगवान का अंश, परमात्मा का यह उल्लेख हो रहा है। परमात्मा तो उस बद्ध जीव के भूत, वर्तमान और भविष्य को भी जानते हैं। वेदाहम समतितानि, भगवान ने कहा गीता में, वेद अहम, मैं जानता हूं। क्या जानता हूं? समतितानि, जो भी घटनाएं बीत चुकी है, सम अतितानि वर्तमानानि चार जुन, और वर्तमान में जो घटनाएं घट रही है उनको भी मैं जानता हूं। भविष्यानि च भूतानि, और भविष्य में जो भी घटनाएं घटेगी भूतों की, जीवों की, बद्ध जीवों की, कश्चन वेदन कश्चन, लेकिन मैं तो जानता हूं बद्ध जीव का भूत, वर्तमान, भविष्य, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता, भगवान कहता है। अहम सर्वस्य, भगवान में से हर बात के स्रोत है, भगवान सर्वत्र है, भगवान वर्तमान, भूत, भविष्य में उस बद्ध जीव के इर्द गिर्द या साथ में रहते हुए भी वो बद्ध जीव भगवान को नहीं जानता। सूत्रे मणि गणाइव, भगवान कहते हैं कैसे नहीं जानता, जैसे कहते मई प्रोतम इदम, मई प्रोतम इदम सर्वम सूत्रे मणि गणाइव। हम जब इस माला को देखते हैं तो क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, फूल देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं, धागे को नहीं देखते। तो हम संसार को देखते हैं या अणु रेणु को देखते हैं, एटम मॉलिक्यूल सब को देखते हैं, लेकिन सबको साथ में रखने वाला जो है, सारे संसार को या सारे अंडांतरस्थ परमाणुचयांतरस्थम, सारे संसार को इकट्ठा रखने वाला जो है, इसको कोई नहीं जानता। जैसे फूल तो दिखाई देते हैं लेकिन फूल को केवल मूर्ख ही समझ सकता है कि फूल ऐसे ही जुड़े हुए हैं, ऐसे ही एक दूसरों को कोई धागा है, सूत्र है, द थ्रेड इज देयर, जो इस सुंदर माला जो बनी, सुंदर माला जो, नहीं तो केवल ढेर ही होता फूलों का, लेकिन सुंदर माला जो बनी किसके कारण, धागे के कारण। इतना सुंदर जो संसार बना है तो वो धागा, वो भगवान अंडांतरस्थ जो है, परमाणुचयांतरस्थम जो है, मयाध्यक्षेन प्रकृति जो है, अहम सर्वश प्रभव जो है, सर्वश चाहम हृदय सन्निविष्ट जो है, तो हुआ। तो बद्ध जीव को साक्षात्कार हो रहा है, और कौन हो सकता है? कतमहा, वो ज्ञान देने वाला, ज्ञानम यद एतद् अदधात कतमहा, हमको ज्ञान देने वाला, उसको उसको ज्ञान हो रहा है, गर्भ में गर्भस्थ जीव को कुछ ज्ञान हो रहा है, कुछ दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, कुछ दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो जीव सोच, और कौन हो सकता है, और कौन हो सकता है? अदधात कतमहा सदेवहा, वह देव ही तो हो सकता है, वह आदि देव ही तो हो सकता है जो त्रैकालिकम अनुवर्तितम शह, वो परमात्मा जो तीनों अवस्था में भूतकाल वर्तमान भविष्य में जीव के साथ रहता है, वही तो मुझे अब ज्ञान दे रहा है, कुछ विचार प्रकट हो रहे हैं। तम जीव कर्म पदवीम अनुवर्तमाना, तो हुआ तो तम, उसको पहले स का भी तम, उस परमात्मा शमनाय वयम भजेम, हम चलो हम शरण जाते, शरण लेते हैं, उस परमात्मा की शरण लेते हैं। और परमात्मा की शरण लेंगे तो होगा क्या, या किस लिए हम परमात्मा की शरण लेते हैं? तापस्त्रय उपशमनाय, तापत्रय उन्मूलनम। श्रीमद् भागवत की कथा यह हो रही है, तो श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही कहा है, श्रीमद् भागवत की कथा का कथा श्रवण का फल क्या होगा? तापत्रय उन्मूलनम, ताप क्या होता है? ताप मतलब कष्ट, ताप मतलब बुखार भी होता है, ताप मतलब टेम्परेचर भी होता है। तापत्रय, तीन प्रकार के कष्ट जीव को आप कहोगे, बस तीन ही, हम तो 300 जानते हैं, तापत्रय है। तो तीन का ही आगे विभाजन होता है, विस्तार होता है, आदि दैवी का आध्यात्मिक आदि भौतिक, ये तापत्रय कहला, तापत्रय उन उन मिलनम। तो श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से क्या होगा? तापत्रय शमनाय, शमन दमन होगा, शमन होगा, शमः दमः तपः शौचम, दमन कालिया का दमन हुआ, शमः दमः, शम दम कहते हैं, इसका दमन होगा, शमन होगा। तो तापत्रय शमनाय, इन तापत्रयों से सदा के लिए बचना है। और जीव कर्म पदविम, तो जीव जो उसके कर्म और कर्म के बाद कर्म एक्शन, फिर उसका एक्शन की रिएक्शन, कॉज एंड इफेक्ट चलता ही रहता, एक कार्य किया तो फिर उसका परिणाम, उसका फल, फिर उसको चख लिया, फिर और कार्य हुआ, और एक्शन रिएक्शन चलती ही रहती है। कुछ भक्षण किया, मांस भक्षण किया, तो किसी को हमने तो नहीं काटा और किसी ने काटा, हमने उसको खाया, तो फिर जन्म लेना होगा, किसकी बारी आएगी? तो उसको मौका देने के लिए जिसको हमने खाया, उसकी बारी हमें खाने की भविष्य में है, तो इसीलिए जन्म लेना होगा। मेरा क्या भविष्य है? एक माताजी ने पूछा हमें, स्वामी जी हाथ देखते हो? और उसने बेचारी ने क्या कहा, अभी अभी मछली खाई थी, साथ में बैठ के हवाई 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 जहाज से हम मॉस्को से आ रहे थे, तो माँ भी थी और बेटी भी थी, तो एक ने मछली खाई एक ने मुर्गी खाई, पेट जब भर गया तो स्वामी जी बगल में बैठे थे, हाथ देखते हो मतलब भविष्य देखते हो, तो मुझे थोड़ा आया था गुस्सा तो इंडियन ये भारतीय तो थे, लेकिन स्वामी जी के बगल में वही बैठ के तुमने उसने मछली खाई मुर्गी खाई, जो उपवास कर सकती थी कुछ जल पानी कर सकती थी फलहार कर सकती थी, लेकिन भरपेट खाई मुर्गी और फिर पूछ रही है। तो शुरुआत में तो कुछ मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने सोच के रखा था कि पुनः अगर पूछती है तो हमारा जवाब रेडी था। और तुमने क्या मुर्गी खाई तो मुर्गी बन जाओगी, और तुम्हारे बेटी ने क्या खाया मछली खाई तो मछली बन जाएगी। तो इस प्रकार ये कर्म जीव कर्म पदवी, एक एक्शन की दूसरी रिएक्शन होती रहती है, मतलब एक जन्म तो आगे के जन्म का कारण बनता है। और इस प्रकार ब्रह्मांड भ्रमिते, ब्रह्मांड भर में भ्रमण होता है, लेकिन इसको रोकने की बात है। तापत्रय शमनाय उपशमनाय वयम भजेम, तो इस जन्म मृत्यु के फेरों से मुक्त होना है। हम ब्रजमंडल परिक्रमा में भी कह रहे थे 84 लाख योनियां है, उसमें भ्रमण करना होता है, तो 84 कोस परिक्रमा करोगे तो 84 लाख योनि में पुनः नहीं आना होगा। एक कोस परिक्रमा करने से 1 लाख योनियों से मुक्त, और एक कोस और 1 लाख। इस प्रकार हमारे यात्री अब कुछ 40 कोस की यात्रा किए हैं, तो 40 लाख योनियों से मुक्त हो गए हैं। अब तो यही बैठ गए, अब तो यही रह गए। वयम भजे महा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, फिर प्रभुपाद की जय। भगवान की विशेष कृपा है, हम जीवों पर जो हम यहां पहुंचे हैं, वृंदावन पहुंच गए कार्तिक मास में, और हम यहां भजन कर रहे हैं, हम भगवान के धाम का आश्रय ले रहे हैं। 40 साल पहले ये उत्सव हम लोग कार्तिक महोत्सव हम लोग मना रहे, दामोदर मास उत्सव, तो 40 वर्ष पूर्व श्रील प्रभुपाद उत्सव मनाए, 1972 उत्सव यहां नहीं मनाए, हम लोग राधा दामोदर मंदिर में थे उस साल। इस्कॉन का पहला उत्सव मनाया जा रहा था, और कुछ 40-50 डिवोटीज उस उत्सव में आए थे। कितने थे तो मैं भी आया था, तो हमको उस समय कोई पूछता कोई फोन हुआ कितने डिवोटीज है, तो हम कहते हैं बहुत, सो मेनी हाउ मेनी कितने 40 डिवोटीज। तो उन दिनों में 40 डिवोटीज मतलब सो मेनी डिवोटीज, अभी तो 4000 डिवोटीज या थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज। उस समय ये जो लैंड है, केवल लैंड ही था, कुछ कंस्ट्रक्शन अभी अभी शुरू हुआ था, वैसे फाउंडेशन खुदाई हो रही थी, और बीच में वो पेड़ जरूर था जो तमाल का वृक्ष है, लेकिन ये वाला नहीं, ये तो दूसरा है। 40 साल पहले दूसरा वृक्ष बड़ा भी हुआ, बूढ़ा भी हुआ, उसने भगवत धाम में प्रवेश भी कर लिया, तो पुनः उस दूसरा पेड़ को यहां होगा, ऐसा इतिहास। तो हम लोग श्रील प्रभुपाद का सानिध्य हमको राधा दामोदर मंदिर में प्राप्त हुआ। श्रील प्रभुपाद वहां से हमको हर प्रातः काल को यहां भेजा करते थे, हम लोग कीर्तन करते हुए लोई बाजार इधर उधर राधा मदन मोहन और भक्ति विधान स्वामी गौशाला, वो समय नहीं थी गौशाला, फिर और भी झिक झैकिंग करते हम लोग यहां पहुंच जाते, यहां प्रणाम करते, लौटते यहां के रज में। तो पेड़ के पास जब हम खड़े होते तो पेड़ उतने ही कद थी, ऊंचाई जितनी हमारी थी, 5 feet टॉल वो तमाल वृक्ष। पुनः हम कीर्तन करते हुए, उन दिनों में बहुत ठंडी हुआ कर, आजकल ठंडी कम हो गई, पता नहीं, तो 40 वर्ष पूर्व हमको पता है वेरी कोल्ड। हम लोग पुनः कीर्तन करते हुए लौटते श्रील प्रभुपाद हर रोज, जैसे यहां भागवत की कक्षा, अब तो हम उनके शिष्य प्रशिष्य कक्षा भागवत की कक्षा, वहां तो 30 दिन हर रोज 30 days 30 भागवतम क्लासेस प्रभुपाद ने दिए, और साथ साथ 30 नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु के क्लासेस श्रील प्रभुपाद। भक्ति रसामृत सिंधु तो छप चुका था, तो प्रद्युम्न नाम के प्रभुपाद के शिष्य पंडित वॉज अ स्कॉलर, तो वो पढ़ा करते थे कुछ सेक्शन, और फिर श्रील प्रभुपाद उस पर आगे उसका भाष्य सुनाते। तो हर प्रातः काल हर सायंकाल राधा दामोदर का जो पीछे का प्रांगण है, आप एक तो सामने का कोर्ट यार्ड है, फिर परिक्रमा करते पीछे से जब आप आ जाते हो, क्योंकि जहां रूप गोस्वामी का समाधि है और भजन कुटीर है, वहां पर ये कक्षा प्रातः काल सायंकाल को हुआ करती थी, वहां भी तमाल वृक्ष है छोटे छोटे, तो वहीं पर श्रील प्रभुपाद 30-40 हम जो शिष्य थे उनको भागवत की कक्षाएं सुनाते। श्रील प्रभुपाद वही रहा करते थे राधा दामोदर में, छोटे से कमरे में जिसका किराया 5 रुपया हुआ करता था, 5 rupees पर मंथ, एवरीडे नहीं। अब कितना देते आप लोग कहीं कर देते हो, 5 rupees पर मंथ। तो प्रभुपाद जो हुआ, ये 72 की बात है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस की स्थापना, और कई सारे मंदिर और कई सारे शिष्य जॉर्ज हैरिसन उनके फॉलोअर और फोर्ड कंपनी के मालिक। लेकिन प्रभुपाद जब वृंदावन आए तो वही रहे जहां वे पहले रहते थे, 1965 के पहले जहां प्रभुपाद रहते थे, उसी कक्ष में पुनः 72 में भी रहने लगे। तो हम लोग जब आए थे बंबई से प्रभुपाद इस उत्सव के लिए, तो मैंने जब श्रील प्रभुपाद को देखा उस छोटे से कमरे में, छोटे से न, तो ये तो बहुत बड़ा व्यासासन है, 6 inch ऊंचा होगा, एक कुशन पर ही प्रभुपाद बैठे थे। हम जैसे प्रातःकाल को पहुंचे बंबई से, तो एक मॉर्निंग को, एक प्रातःकाल को, तो हमने राधा दामोदर का दर्शन किया और प्रभुपाद के कक्ष में गए, तो प्रभुपाद छोटे से कमरे में अकेले बैठे थे। फिर हम प्रभुपाद के समक्ष बैठ गए और श्रील प्रभुपाद पूछ रहे थे कैसी है इसका प्रोजेक्ट, बंबई का कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू होने वाला था, उसकी पूछताछ करने लगे और हम कुछ होंगे 10-12 डिवोडीज बंबई के, उनसे प्रभुपाद दर्शन दे रहे थे, हम मिल रहे थे। तो प्रभुपाद हमारी बोलते भी रहे, प्रभुपाद बोलते जाते और हमारी ओर देख भी रहे थे। मैं भी सामने ही बैठा था, बिल्कुल सामने, तो मेरी ओर देखने का जब प्रभुपाद का नंबर आ जाता तो प्रभुपाद थोड़ा रुक जाते, फिर उनका कैमरा ऐसा घूमता, फिर अटक जाते। फिर मैं सोच रहा था क्या क्या बात, मेरा बटन तो ठीक नहीं है, तिलक नहीं है, क्या हुआ सब। तो कई बार ऐसा हुआ लेकिन मैं पता नहीं लगवा पाया तब तक जब तक प्रभुपाद ने कहा स्टॉप। तो क्या स्टॉप किया प्रभुपाद, तो उन दिनों में ऐसा ही, ये पहला आदेश है मुझे, स्टॉप इट, ये पहली इंस्ट्रक्शन मुझे प्रभुपाद ने दी। उन दिनों में मैं जब सुनता था कोई ध्यान पूर्वक कोई बात सुनता था, मेरे पैर हिलते थे, तो मैं तो सुन रहा था, मुझे पता नहीं चला था कि मेरा ये, तो प्रभुपाद स्टॉप इट, तो मैंने उसको रोक दिया और फिर पुनः कभी नहीं हिलाया। तभी हिलाता हूं जब थोड़ा इसकी चर्चा हो जाती है। तो ये पहली इंस्ट्रक्शन मुझे कुछ कुछ आदेश होते, डू दिस डोंट डू दिस, विधि निषेध, तो कुछ निषेध की बात मुझे पहले कही, बाद में विधि की बात कही। उसी कार्तिक में वैसे हम प्रभुपाद के सानिध्य के लिए आए थे, लेकिन हम दो भक्तों को प्रभुपाद आगरा भेजे, बहुत बड़ा गोवर्धन पूजा महोत्सव संपन्न करना था उस कार्तिक में, तो बहुत सामग्री चाहिए थी, गेहूं चाहिए, आटा चाहिए, चावल चाहिए, गुड़ चाहिए, तेल, घी, देश दा। तो प्रभुपाद ने मुझे और एक भक्त को प्रभुपाद भेजे आगरा, और द ग्रेन मार्केट में हम लोग डोर टू डोर जाके बहुत बड़ी सामग्री एक छोटा सा टेम्पो भर के हम लोग ले आए। तो 72 के कार्तिक में गोवर्धन पूजा महोत्सव, बिग गोवर्धन पूजा फेस्टिवल, हम लोग जहाँ केसी घाट है, केसी घाट वहां के पैलेस है, राजा भरतपुर का महल अब भी है, तो हम प्रभुपाद राधा दामोदर में रहते थे, हम लोग वहां पर रहते थे पहले, और वहां से फिर राधा दामोदर हमारा आना जाना हुआ करता था। उस साल एक दिन मुझे प्रभुपाद जलेबी लाने के लिए भेज दिए। उनके जो कुक्स थे, आई थिंक अभी मालती या जमुना माता जी, और पदार्थ तो बनाते, लेकिन जलेबी बनाना आसान नहीं है, तो प्रभुपाद को जलेबी खाने का इच्छा हुई, तो उन्होंने मुझे वही बाजार भेजा, और मैं गर्म बन रही थी तो मैं वहां खड़ा होके गर्मा गर्म जलेबी लेके दौड़ा मैं प्रभुपाद के कक्ष में। वही मुझे 77 and 72, तो पहला फेस्टिवल 72 प्रभुपाद पूरा महीना रहे, फिर मुझे याद नहीं आया अगले, वैसे वृंदावन फेस्टिवल में आया करते थे, मायापुर वृंदावन फेस्टिवल, लेकिन कार्तिक में फिर 77 में श्रील प्रभुपाद पुनः, आप जानते ही हो, आए रहे अपने कक्ष में. So you see, mass mein, Damodar, month of Damodar, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Us avastha mein bhi aap shayad sune, dekhe, padhe honge, kis avastha mein Prabhupada. Utke baithna bhi muskil, lekin Prabhupada. Us avastha mein bhi यात्रा करना चाहते थे, गोवर्धन परिक्रमा में जाना चाहते थे प्रभुपा, और बैलगाड़ी से, हेलीकॉप्टर से नहीं, बैलगाड़ी से. मतलब बैलगाड़ी हमने लाके खड़ी भी की थी, और उस नेक्स्ट मॉर्निंग प्रस्थान करना था, लेकिन वो कार्यक्रम नहीं बना. फिर कुछ दिन के बाद प्रभुपाद पुनः ट्रैवलिंग की बात कर रहे थे, और फाइटिंग विथ माया कहते, मैं इस संसार को थोड़ा रेस्टलेस फील कर रहे थे, लेटे नहीं, मैं बाहर जाना चाहता हूं, प्रचार करना चाहता हूं, यात्रा करना चाहता हूं, माया के साथ लड़ते हुए मैं इस शरीर को त्यागना चाहता हूं. तो पुनः ट्रैवलिंग, बस से ट्रैवलिंग की योजना वैसे बनाई ही थी प्रभुपाद. कई सारे प्रभुपाद का क्वार्टर भरा हुआ था भक्तों से, और प्रभुपाद कह रहे थे ना बुलक कार्ड से तो नहीं हो, लेकिन बस से तो मैं जा सकता हूं. तो सभी ने एग्री किया, बस से आप जा सकते हो. तो कई भक्त फिर कह रहे थे कि प्रभुपाद आप जाओगे तो फिर मैं भी आ सकता हूं. एक एक करके भक्त श्री प्रभुपाद की अनुमति ले रहे थे. गिरिराज स्वामी महाराज ने पूछा, वे स्वामी महाराज नहीं थे, ब्रह्मचारी थे, तो क्या मैं आपके साथ आ सकता हूं? वो लाइफ मेंबरशिप का कार्यक्रम करते थे, तो जहां भी जाएंगे वहां मैं भी लाइफ मेंबर बना सकता हूं, कि आ सकता हूं मैं? यस, यू कुड कम. फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज हमारे साइंटिस्ट, तो जहां भी जाते हैं, जिस शहर में आप जाओगे तो वहां कुछ साइंटिफिक माइंडेड लोग होते ही है, तो मैं अगर आऊंगा तो कुछ ऑर्गेनाइज कर सकता हूं, साइंटिफिक प्रीचिंग मैं जा सकता हूं? यस, यू कुड गो. एक भक्ति चैतन्य करके थे चंडीगढ़ से, अच्छे ड्राइवर थे, तो प्रभुपाद मैं आपकी गाड़ी चला सकता हूं, आ सकता हूं? यस, यू कुड कम. तो मैंने भी पूछा, क्या मैं भी आ सकता हूं? तो प्रभुपाद कहे, तुम भी आ सकते हो, तुम्हारे लीडर होंगे, तुम भी आ सकते हो. तो बात तो मैं, दिस वॉज 3 days बिफोर 14 नवंबर का जो दिन है, उसके कुछ दिन पहले ये योजना तो बनी थी. फिर हम लोग बसेस खोज रहे थे, इंडिया का बहुत बड़ा मैप हमने खरीदा था, और सब प्लानिंग तो हम लोग कर रहे थे. देन श्रीला प्रभुपाद डिपार्टेड. तो या गुरु की बात हो रही है, तो हमारे लिए श्रील प्रभुपाद हमारे फाउंडर आचार्य ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्सियसनेस. देखिए कितने 40 वक्त 72 में थे, अब कितने इस उत्साह में आ रहे हैं. और 1965 में कितने थे? 1965 की जन्माष्टमी प्रभुपाद कहां मनाए थे? जलदूत बोट में मनाए. तो उस उत्सव को मनाने वाले अकेले प्रभुपाद ही थे, इस्कान भी नहीं था. फिर आगे न्यूयॉर्क पहुंचे तो एक साल के उपरांत इस्कॉन की स्थापना हुई और अब और मंदिरों का निर्माण हुआ और जन्माष्टमी यहाँ मनाए जाने लगी। अब लास्ट जन्माष्टमी 160 देशों में जन्माष्टमी मनाई गई। तो ये सारी रचना योजना संकीर्तन पितरो कमलायताक्ष विश्वं भरो द्विज भरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। संकीर्तन आंदोलन के फाउंडिंग फादर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तम वयम भजेम यह कहा है, तापत्रयो शमनाय वयम भजेम। चलो चलो हम क्या करते हैं, शरण में आते हैं। किसकी शरण में आते हैं या क्यों आते हैं? उनकी शरण में आते हैं, परमात्मा, वही परमात्मा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की ये अहेतु की कृपा का फल है। कृष्ण भावना को उपलब्ध किया जा रहा है, विश्व भर के कोने कोने में कृष्ण भावना पहुंचाई जा रही है, पहुंच रही है। और कई सारे जीव जिन्होंने अपनी अपनी माताओं के गर्भ में ऐसा संकल्प किया होगा, उनके मन में विचार आया होगा, लेकिन पुनः जब जन्मे तो भूल गए अविद्यार भरे। किंतु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की अहोतु की कृपा और उनके सेनापति चैतन्य महाप्रभु के जो संकीर्तन आंदोलन है, उसके सेनापति कमांडर इन चीफ कौन? श्रील प्रभुपाद, उनका तो उनकी उनकी कृपा से अब सारे विश्वभर में द टॉप मोस्ट वो धर्म नहीं, इसको भगवान कहे सर्वधर्मान परित्यज्य। अधिकतर लोग उसी धर्म को अपनाए हुए हैं जिसको भगवान ने क्या कहा है, त्यागो छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज्य। लेकिन भगवान की चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण बलराम की राधा श्याम सुंदर श्रील प्रभुपाद की कृपा से मामेकम शरणम व्रज, मामेकम क्या शरणम, शरणम व्रज, शरण में जाओ, शरण में जाओ। किसकी शरण में जाओ? ब्रज सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, शरणम व्रज। व्रज मतलब जाना, व्रज मतलब व्रज मंडल भी है, व्रज व्रज मतलब जाना भी है। तो सर्वधर्मान परित्यज्य करके क्या करो, मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ, मतलब वृंदावन आओ, क्या वृंदावन जाओ, वृंदावन आओ। और वृंदावन आया तो यहां से फिर अभी कई आना जाना, तो यहां से कहां जाओगे? हाँ यही है, जीना यहां मरना यहां। एक भक्त एक समय परिक्रमा में आए थे, ब्रजमंडल परिक्रमा, उनका उन्होंने अपना साक्षात्कार कहा, वे लंदन के थे तो वो कहा, उन्होंने कहा हम सभी को साक्षात्कार सुनाया। जब वे लंदन में थे तो प्रचार में कहा करते थे या सोचा करते थे, हमें वी हैव टू गो बैक टू होम, बैक टू गॉड है, मतलब लंदन से और कहीं जाना है, वी हैव टू गो बैक, वी हैव टू गो, जाना है, कहीं जाना है। उस जाने का स्थान और है, लंदन नहीं है, और कहीं जाना है। लेकिन जब वे वृंदावन आए और उन्होंने ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे थे, तो जैसे दिन बीत रहे थे, एक दिन बीत गया, दो दिन, दस दिन, बीस दिन, तो धीरे 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 ये जो कहीं आने जाने का जो विचार है, उन्होंने कहा कि ये सब मिट गया। मैं सोच रहा था अभी मुझे कि जाना तो कहीं नहीं है, बैक टू होम, दिस इज द होम, यही तो होम है, अभी जाना कहा है, और कहीं जाना नहीं है, मैं आ गया, मैं भगवान के धाम आ गया, यहां से कहीं जाना नहीं है। वृंदावन धाम सर्वोपरि है, भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोपरि है, तो फिर उनका धाम भी मत्तः परतरम न अन्यत, मुझसे और कोई श्रेष्ठ नहीं है, तो उनका धाम वृंदावन धाम से कोई धाम और श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। तो दिस इज इट, ये वृंदावन धाम ही जहां राधा राधा श्याम सुंदर कभी कभी कहती है वैकुंठ ऐश्वर्य धाम है, यह माधुर्य धाम है, लेकिन यहां भी कोई, यहां ऐश्वर्य का अभाव नहीं है, वैसे प्रधानता तो माधुर्य मधुरता की है, माधुर्य रस या श्रृंगार रस की प्रधानता प्राधान्य है, लेकिन यहां ऐश्वर्य भी तो कुछ कम नहीं है, ऐश्वर्य प्लस, ऐश्वर्य भी है माधुर्य भी है। वैकुंठ में कितनी लक्ष्मियां होती है, वैकुंठ में कितनी होती है, एक ही होती है, या वैकुंठ में नहीं होती तो लेकिन यहां कितनी है, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, असंख्य लक्ष्मियां इस धाम में जयतेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही, या इंदिरा मतलब लक्ष्मी, शश्वत सदा के लिए यह निवास करती है, और एक नहीं, एक नारायण की एक लक्ष्मी है, वराह भगवान की एक लक्ष्मी, नरसिंह भगवान या नारायण की लक्ष्मी, लेकिन श्री कृष्ण की ये गोपी है, राधा लक्ष्मी है, आदि लक्ष्मी तो राधा है और गोपियां लक्ष्मियां है, लक्ष्मी सहस्रत संभ्रम सेव्यमानम, और धाम का वैभव क्या कहे, यहां की मिट्टी कैसी है, उसे मिट्टी नहीं कह सकते, मिट्टी कैसी है, चिंतामणि, मिट्टी ही चिंतामणि है, जूल्स, फिर जूल्स क्या होंगे, फिर यहां की मिट्टी ही किसे बना धाम, चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर अभिपालयंतम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो यह वैभव का अभाव नहीं है, चिंतामणि का धाम, और यहां के वृक्ष डिजायर ट्री, साधारण वृक्ष नहीं, अब जो मांगोगे मिलेगा इस धाम में। और यह की गाय कैसी है, सुरभि कामधेनु है, तो ऐसा ऐसा, और या ऐसे धाम में जहां ऐसे असली संपत्ति तो वैभव तो स्वयं श्री कृष्ण ही है, यहां का ऐश्वर्य श्री कृष्ण की उपस्थिति, उनकी लीलाएं, उनके सारे कार्यकलाप, यही यही संपत्ति है, संपत्ति है। इसलिए चिंतामणि धाम होते हुए भी उनकी उसकी ओर ध्यान नहीं है, श्री कृष्ण ही ध्यान आकृष्ट करते सभी का और सभी उसी में प्रसन्न है। सनातन गोस्वामी के पास भी क्या परा क्या कौन सा मणि था, पारस मणि था, पारस मणि। किन कहां रखा था उन्होंने पारस मणि को, डस्टबिन कूड़ा करकट में डिब्बे में रखा था। तो एक व्यक्ति जो पारस मणि चाहता था, मैं जिसको भी स्पर्श करूं क्या बन जाए, सोना बन जाए, तो किसी ने बताया कि सनातन गोस्वामी के पास पारस मणि है, तुम प्राप्त कर सकते हो। तो भागे दौड़ा आया, मुझे पारस मणि चाहिए, मैं आई वॉन्ट टू बी द वेल्थीएस्ट, मैं सबसे धनी बनना चाहता हूं। तो वहां रखा है, कहां रखा है, कचरे के डिब्बे में रखा है मैंने, पारस मणि का क्या मूल्य है, कचरे के डिब्बे में रख दिया। तो उसको लेके जब लौट रहा था तो किसी ने पूछा है क्या कहां दौड़ रहे हो, नहीं नहीं जाने दो मुझे, पारस मणि मुझे मिला है, मैं अब हर लोहे को स्पर्श करूंगा, मेरे घर में जो भी है वो सारा सोना बनेगा। कहां रखा था, कचरे के डिब्बे में रखा था। अरे तुमको पागल बनाया सनातन घोष, सबसे मूल्यवान वस्तु थोड़े ही कचरे के डिब्बे में कोई रखता है, सोचो तो सही। तो उसने सोचा था, हाँ इट मेक्स सेंस, तो वापस आया और पूछा, नहीं नहीं ये मूल्यवान वस्तु नहीं हो सकती, आपने तो कचरे के डिब्बे में रखा इसको, और कोई आपके पास अधिक मूल्यवान वस्तु होनी चाहिए, वेयर इज इट, कहाँ है, दीजिए मुझे वो दीजिए। तो फिर सनातन गोस्वामी ने कहा कि इस पारस मणि के मणि को पहले तुम फेंक क्या हो। फिर वो सोचने लगा, इसको फेंक तो दिया और फिर पुनः कोई इससे अधिक मूल्यवान वस्तु नहीं मिल जाएगा तो। लेकिन फिर अंततोगत वश ने फेंक ही दिया, दोनों साथ में नहीं मिल सकते। वैराग्य न चक्रीय थे, उसका त्याग करना होगा तभी अधिक अधिक मूल्यवान वस्तु मिलेगी। तो उस समय फिर सनातन गोस्वामी ने मूल्यवान वस्तु, द मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट, तो पारस मणि या ऐश्वर्य या वैभव, उसका अधिक मूल्य भक्त नहीं देते, सनातन गोस्वामी ने नहीं दिया। अधिक सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु, वस्तु क्या, व्यक्ति ही है, और वो कौन सी, फिर दे दिया, तैयार हो रोड़े, कहते बोलो फिर ले लो इसको। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर सबसे मूल्यवान वस्तु उसको प्राप्त हुई। तो आप सभी को क्या चाहिए, पारस मणि चाहिए। वृंदावन आए हो तो कौन चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको, बस कृष्णा चाहिए, कृष्णा। सनातन गोस्वामी जब बूढ़े थे तो भी उनकी परिक्रमा चल ही रही थी, कृष्ण प्राप्ति के लिए, कृष्ण प्रसन्नता के लिए गोवर्धन परिक्रमा, बूढ़ापे की अवस्था में भी परिक्रमा सनातन गोस्वामी किया ही करते थे। तो भगवान को आई दया सनातन गोस्वामी को एक दिन मिले और कहे, सनातन गोस्वामी तुम कभी परिक्रमा रोक दो, परिक्रमा रोक दो, परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं कैसे रोक सकता हूं, आई हैव टू डू, मुझे करना है, परिक्रमा करना चाहता हूं। तो भगवान अंतर्धान हुए और थोड़ी देर के बाद पुनः लौटे और कहे, सनातन सनातन ए ले लो, शीला लो। भगवान ने अपने चरण के चिन्ह बनाए थे उसके ऊपर, कहीं ये ले लो और फिर मैं क्या करूं। तो भगवान कहे कि तुम अब से इस शीला की परिक्रमा करो तो फिर होगी तुम्हारी गोवर्धन परिक्रमा। और वो शीला अब भी 72 में जब हम आए राधा दामोदर मंदिर, इस महीने में सबसे अधिक परिक्रमा राधा दामोदर मंदिर की होती है। एक तो राधा दामोदर मंदिर है और उस मंदिर के ऑल्टर पर यह शीला है। तो जो कुछ चतुर लोग शीला तो दी थी सनातन गोस्वामी को, तो जो बूढ़े भी नहीं है वही वहां पहुंच जाते हैं और उसी की परिक्रमा कर ली तो मान लेता हमने परिक्रमा या धन परिक्रमा हो गई और धन परिक्रमा हो गई। तो बहुत बड़ी संख्या में तो हमारे आचार्यों ने इस धाम का वास किया है। चैतन्य महाप्रभु सबसे अधिक प्रिय तो कृष्ण प्रिय, तो फिर कृष्ण का धाम भी प्रिय या कृष्ण के धाम से कृष्ण को अलग तो नहीं किया जा सकता। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेते ही वैसे पहला विचार आई हैव टू गो टू, मुझे वृंदावन जाना। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आना चाहते थे तो प्रयत्न तो सफल नहीं हुए, लेकिन फाइनली आ ही गए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने परिक्रमा की, उसके पहले उन्होंने कई सारे गोस्वामी वृंदों को भेजा था जो आए यहां। उन्होंने इस धाम का गौरव की पुनः स्थापना की। वंदे रूप सनातन रघुजगौ श्री जीव गोपाल को, सनातन गोस्वामी का मंदिर राधा मदन मोहन, जीव गोस्वामी राधा दामोदर मंदिर, रूप गोस्वामी राधा गोविंद मंदिर, लाइक दिस 200 वर्ष पूर्व शेर गोस्वामी वृंदों ने धाम वास किया, मंदिरों का निर्माण किया, विग्रहों की पुनः स्थापना की, ग्रंथों का निर्माण किया, खूब परिक्रमाएं की, खूब बोधयंतः परस्परम किया, भगवान की कथा का श्रवण और कीर्तन किया। राधा कुंड को खोजने वाले तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ही थे। फिर पुनः परिक्रमा की स्थापना हुई तो उसी परंपरा को श्रील प्रभुपाद ने रिवाइव किया, उसको पुनः जागृत किया। तो धाम ये शाश्वत धाम है, भगवान की लीला आज भी विद्यमान है। कहाँ होंगे भगवान इस समय, कहाँ होंगे, क्या करते होंगे? गोचारण और प्रसादम, या प्रसाद होना है तो क्या कह रहा था मैं, या कहाँ होंगे कृष्ण या। तो ये भी एक साधना है या भजन है, भगवान के लीलाओं का स्मरण। इस समय कहाँ होंगे और उस लीला का स्मरण। तो ये गोचारण, ये पूर्वान्न काल, पूर्वान्न मध्यान्न अपराह्न संध्या काल, प्रदोष काल, रात्रि, फिर निशा निशांत, प्रातः काल, 8 काल और 8 अलग अलग प्रकार की, अलग अलग स्थानों में अलग अलग भाव भी है। कई सख्य भाव की लीला, श्रृंगार माधुर्य रस की लीला, वात्सल्य भाव की लीला है भगवान की। तो ये नहीं कि भगवान यहां थे लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, बहुत सा नहीं, आज भी अब भी इस समय इस क्षण भगवान की लीला यह संपन्न हो रही है। तो उन लीलाओं का स्मरण, भगवान का नाम स्मरण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, ये सब करने से वैसे क्या होने वाला है, तापत्रय उपशमनाय, जो तापत्रय जो है उससे मुक्ति होगी, उसका शमन होगा, उसका दमन होगा, उससे मुक्त होंगे हम। निधाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम।